अगले कुछ दिन भी यूं ही बीत गए। सबकी जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। वक्त के साथ कुछ रिश्तों में नज़दीकियां आ रही थीं तो कुछ इन दूरियों से बेचैन थे। सृष्टि और अर्जुन का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था, पर अभी उन्हें इसका एहसास नहीं था। रेहान और रश्मि के लिए हर दिन खास था, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ उनके शादी की डेट नज़दीक आ रही थी। वहीं आरवी का हर दिन शान को याद करते हुए कट रहा था। आरवी का आज का दिन भी यूं ही बीत गया था। सुबह के अपने काम निपटाकर वो एकेडमी चली गई थी। वहां से फ्री होकर वो घर के लिए निकल गई थी। आज उसने विराज से बात करके अपनी इस महीने की सैलरी ले ली थी और आते हुए सोच लिया था कि दो दिन बाद संडे है तो घर जाकर अनुपमा जी को ये पैसे दे देगी। जब से शान गया था वो उदास रहने लगी थी। सबके लिए लबों पर मुस्कान सजा ली थी, पर आँखों में मायूसी और सूनापन पसरा रहता था। उसकी उदासी सभी देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे, और सबको उम्मीद थी कि ये दूरियां उनके रिश्ते को बेहतर बनाएगा। आरवी उदास सी अंदर चली आ रही थी। हॉल में ही अर्पिता जी और सुभाष जी बैठे बातें कर रहे थे। आरवी उन्हें देखकर फीकी सी मुस्कान लबों पर बिखरते हुए उनके पास चली आई। कुछ देर बात करने के बाद वो फ्रेश होने का बोलकर उठ गई। अर्पिता जी और सुभाष जी उसको देखे यूं मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ रहस्य छुपा हो उस मुस्कान के पीछे। शान के जाने के बाद से आरवी को वो कमरा बेजान सा लगता था। वहां जाती तो वहां की हर चीज उसको शान की याद दिलाती थी। कुछ दर्द भरी तो बहुत सी खूबसूरत यादें भी जुड़ी थीं उसकी उस कमरे से, जिसका एक अटूट हिस्सा शान रहा था। इसलिए उन लम्हों की याद आते ही वो शान को और ज्यादा मिस करने लगती थी। आरवी जल्दी से कमरे में नहीं जाती थी, नीचे ही सुभाष जी और अर्पिता जी के साथ रहती। दोनों जानते थे कि वो क्यों कमरे में जाना अवॉइड कर रही है, पर वो खामोश थे। शान के लिए आरवी की मोहब्बत, उसको देखने की तड़प उसकी आंखों में नजर आती थी, जिसको सब देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे, साथ ही खुश भी थे। आरवी बेमन से मुंह लटकाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसका मन बहुत उदास था और वो अब की शान को याद करते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची और उसने निगाहें उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। सामने शान था, जो अपनी स्लीव्स को फोल्ड करते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था। उसका ध्यान अपने काम पर था, इसलिए उसने सामने सीढ़ियों के पास खड़ी आरवी को अब तक देखा ही नहीं था। अभी कुछ देर पहले ही वो वापस आया था और फ्रेश होकर नीचे आ ही रहा था, जब आरवी की नज़र उस पर पड़ी। आरवी की निगाहें शान के चेहरे पर अटकी हुई थी। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अपनी घनी पलकों को छपकाते हुए एकटक उसको देखे जा रही थी, मानो खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही हो कि ये उसका कोई ख्वाब नहीं है। पर वहीं मन घबरा भी रहा था कि कहीं ये कोई हसीन सपना तो नहीं जो पलक झपकते ही टूट जाएगा। उसके सीने से धड़कता दिल, जो इतने दिनों से शान के लिए तड़प रहा था, उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही वो जोरों से धड़कने लगा। बेकरार निगाहें तो इतने वक्त से उसकी एक झलक देखने को बेचैन थीं, वो शान के चेहरे को एकटक निहारते हुए अपनी बेचैनी को करार में बदल रही थीं। शान ने अपनी बाजुओं को फोल्ड करने के बाद जब सामने की तरफ निगाहें घुमाईं तो सामने खड़ी आरवी पर उसकी निगाहें ठहर सी गईं। इतने लंबी जुदाई के बाद आज उसको आरवी को फिर से देखने का मौका मिला था, जिसको वो किसी कीमत पर अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। आरवी के चेहरे पर निगाहें टिकाएं वो धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही मिनटों में वो ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों की बेचैन निगाहें एक दूसरे की सूरत को आंखों के रास्ते अपने दिल में बसाते हुए उन्हें सुकून पहुंचाने लगीं। कुछ देर खामोशी से शान को निहारने के बाद जब आरवी को एहसास हुआ कि ये उसका कोई ख्वाब नहीं है, उसकी तपस्या का फल है, शान सच में उसके सामने खड़ा है, तो वो बिना एक पल गवाए सीधे उसकी गर्दन में अपनी बाहों को उलझाते हुए उसके गले से जा लगी। इस वक्त उसको ना खुद का होश था ना ही जगह, और इस बात से कोई फर्क पड़ रहा था कि शान उसके बारे में क्या सोचेगा। हर बात से बेखबर वो इस वक्त बस इतना जानती थी कि इतने दिनों से वो शान के लिए तड़प रही थी, और आज जब शान उसके सामने था तो उसकी करीब की एहसासों से वो उस तड़प और बेचैनी का अंत करना चाहती थी। उसकी धड़कनों के एहसास से अपनी बेकरार दिल को उसका खोया चैन लौटाना चाहती थी। शान उसके यूं अचानक गले लगने से शॉक्ड रह गया था। इतना व्याकुल उसने आज तक उसको कभी नहीं देखा था कि बिना जगह और माहौल देखे ऐसा कुछ कर जाए। वो कुछ पल स्तब्ध सा उसको देखता रहा, वो वहीं जम सा गया था। पर जैसे ही उसके कानों में आरवी की सिसकियों की आवाज़ पड़ी, वो एकदम से होश में लौटा और उसने चौंक कर आरवी को देखा, जो उसके सीने से लिपटी सिसक रही थी। शान ने एक नज़र उसको देखा, फिर निगाहें उठाई तो सामने सोफे पर बैठे अर्पिता जी और सुभाष जी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। शान कुछ असहज उठा। एक तो आरवी उनके सामने ही उसके सीने से चिपक गई थी, ऊपर से दोनों उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। शान ने झेपते हुए उन पर से निगाहें हटा ली। हमेशा चट्टान सा सख्त और भावहीन रहने वाला शान आज चाहकर भी खुद को सख्त रखते हुए आरवी को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। जो चेहरा अक्सर गुस्से से तमतमाया रहता था, आज उस पर शर्म की लाली फैल गई थी, जिसे महसूस करते हुए अर्पिता जी मुस्कुराकर सुभाष जी को लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उन्हें अकेले में वक्त दे रहे थे, जिनकी इस वक्त उन्हें बहुत जरूरत थी। शान कुछ पल निगाहें घुमाता रहा, फिर उसने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। शान ने जब उन्हें वहां नहीं देखा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। उसने गहरी सांस छोड़ते हुए अब निगाहें झुकाकर खुद से लिपटी हार्वी को देखा, जो उससे लिपटी हुई अब भी सिसक रही थी। शान ने कुछ सोचते हुए उसकी पीठ पर अपनी बाहों को लपेटते हुए उसकी पीठ को सहलाते हुए बड़े प्यार से कहा, आरवी। उसने इतना कहा ही था कि आरवी, जो उसकी बाहों के लपेटने पर उसकी बाहों में समा गई थी, उसने सुबकते हुए उसकी बात काटते हुए कहा, मैंने आपको बहुत मिस की। आप तो वहां जाकर मुझे बिल्कुल ही भूल गए। आपको एक बार भी मेरी याद नहीं आई। आपने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा। पता है आपके जाने के बाद कितनी अकेली हो गई थी मैं। सब थे, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एकदम तन्हा हो गई हूँ। कितना याद करती थी मैं आपको। अंशु को तो मैं समझाकर संभाल लेती थी, पर खुद को नहीं समझा पा रही थी। बुरे हैं आप, बहुत बुरे हैं। आपके पास दिल है ही नहीं। आपने तो कहा था कि आप मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो भला कोई अपनी पत्नी को यूं अकेला छोड़कर जाता है। ऊपर से आपने तो मुझसे एक बार भी बात तक नहीं की। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। आरवी उसके सीने से लगी उससे उसकी ही शिकायत कर रही थी, और शान उसकी शिकायतें मुस्कुराकर सुन रहा था। जैसे ही आरवी चुप हुई, शान ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, पर तुम तो मुझसे बात कर रही हो। इतना ही नहीं, मेरे सीने से लगी मुझसे मेरी ही शिकायत भी कर रही हो। तुम तो बड़ी माँ और डैड के सामने ही मुझसे आकर चिपक गई थी, और अब कह रही हो कि नाराज हो मुझसे, बात नहीं करोगी मुझसे। आरवी के कानों में जैसे ही शान की बात पड़ी, उसको एकदम से याद आया कि अर्पिता जी और सुभाष जी वहीं हैं। आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं और सिसकियां एकदम से रुक गईं। वो तुरंत उसकी बाहों से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी, पर शान ने अपनी पकड़ उस पर कस दी और उसकी घबराहट की वजह को समझते हुए मुस्कुराकर आगे बोला, डोंट वरी, अब वो यहाँ नहीं है। तुम्हारी बेकरारी देखकर वो खुद यहाँ से चले गए।
आरवी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने उसकी बाहों के घेरे से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए छटपटाते हुए कहा, छोड़िए मुझे, कोई देख लेगा। जिन्हें देखना था उन्होंने जो देख लिया, तो अब छोड़ने का क्या फ़ायदा। वैसे भी इतनी देर से तुम मुझसे चिपकी हुई थी, तब मैंने तो तुम्हें नहीं कहा मुझसे दूर जाने को, तो अब तुम्हें भी हक नहीं मुझे छोड़ने को कहने का। शान आंखें बंद किए उसकी करीबी के एहसासों को महसूस करने लगा था। आरवी ने बहुत कोशिश की, पर जब शान ने उसको नहीं छोड़ा, तो उसने उसकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया। कितना सुकून था इस लम्हे में। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में समाए आंखें बंद किए इस सुकून को महसूस करने लगे। कुछ देर एक दूसरे की मौजूदगी के एहसासों को महसूस करने के बाद शान ने उसको अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद किया, तो आरवी तुरंत छिटक कर उससे दूर हट गई। शान ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, नाराज़ हो मुझसे कि मैंने इतने दिनों में एक बार भी तुम्हें फ़ोन नहीं किया। आरवी, जो कुछ देर पहले ही अपनी हरकत पर अब भी असहज महसूस कर रही थी, उसने निगाहें उठाकर उसको देखने की जहमत तक नहीं की और यूं ही सर झुकाए इनकार में सर हिला दिया। शान उसके गालों की गुलाबी रंगत देख मुस्कुराया, पर अभी कुछ देर पहले तक तो तुम मेरे सीने से लगी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। आरवी अब और ज़्यादा नर्वस फील करने लगी और घबराहट के नारे अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए बोली, नहीं, वो बस इतने दिनों बाद आपको देखा तो। उस पर ध्यान मत दीजिए, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। उसने धड़कते दिल के साथ किसी तरह अटकते अटकते अपनी बात कही और खामोशी से सर झुकाए खड़ी रही। शान ने उसके तरफ एक कदम बढ़ाया तो आरवी ने हड़बड़ाहट में कदम पीछे हटा लिए और घबराई निगाहों से उसको देखने लगी। उन आंखों में अब भी नमी बाकी थी, जिन्हें देखते ही शान के कदम रुक गए। चेहरे पर दर्द उभर आया। उसने आरवी की भीगी निगाहों को देखते हुए फिर से सवाल किया, बहुत मिस किया ना तुमने मुझे, बहुत तड़पाया ना मैंने तुम्हें। आरवी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी निगाहें झुका ली, और यही उसके सवाल का जवाब था। शान ने बिना एक पल गंवाए उसको अपनी तरफ खींचते हुए अपने सीने में भींच लिया और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी, वक्त ही नहीं मिला। आगे से दोबारा कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। आरवी ने सिर हिला दिया। कुछ देर यूं ही उसके सीने से लगे रहने के बाद उसने उसकी बाहों को खुद पर से हटाया और कदम पीछे हटाते हुए बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो आगे सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, पर अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और उसने पीछे मुड़कर शान को देखते हुए कहा, आपकी शर्ट मेरे आंसुओं से भीग गई है, मैं दूसरी निकाल देती हूँ, आकर बदल लीजिए। इतना कहकर वो वापस मुड़कर आगे बढ़ गई। शान, जो उसे ही देख रहा था, वो मुस्कुराकर उसके पीछे चला आया। रूम में जाकर आरवी ने उसकी शर्ट निकालकर बेड पर रख दिया और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शान ने शर्ट देखी, फिर मुस्कुराकर शर्ट बदलकर नीचे चला गया। आरवी भी कुछ देर बाद चेंज करके नीचे पहुंची। अब अंशु भी आ चुकी थी और फिलहाल वो शान से चिपकी उससे उसकी शिकायत कर रही थी, जैसे कुछ देर पहले आरवी ने की थी, और शान मुस्कुराकर उसकी शिकायतें भी सुन रहा था और उसको प्यार करके उन्हें दूर भी कर रहा था।
अर्पिता जी और सुभाष जी भी वहीं थे। शान तो अब तक सहज हो चुका था, पर आरवी की निगाहें जैसे ही उन दोनों पर पड़ी, उसको अपनी हरकत याद करके शर्मिंदगी महसूस होने लगी और वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ गई। उसकी हड़बड़ाहट देखकर अर्पिता जी और सुभाष जी के साथ साथ शान भी मुस्कुरा उठा था। कुछ देर बाद सबने साथ में लंच किया। उस दौरान भी आरवी ने निगाहें तक नहीं उठाई। लंच के बाद अंशु आज शान के साथ खेलने में व्यस्त हो गई, तो आरवी शान के धोने वाले कपड़े निकालने लगी। आधा दिन यूं ही बीत गया। शान के आ जाने से आरवी अब काफी बेहतर महसूस कर रही थी। सफर के थकान के वजह से शान दोपहर में अंशु को सुलाते हुए खुद भी सो गया था और उस दौरान आरवी ने उसको जी भरकर निहार लिया था। शाम को सुयश जी आ गए थे तो शान उनसे भी मिला और दोनों की बातें कई देर तक चली। उसके बाद सबने साथ में डिनर किया, फिर सोने चले गए। आरवी भी सुभाष जी की मालिश करने के बाद अपने और शान के कमरे में चली आई थी। फ्रेश होने के बाद वो अपनी जगह बैठकर अंशु और शान को देखने लगी, जो अपनी ही मस्ती में खोए हुए थे। बड़े दिनों बाद अंशु को उसके डैडी मिले थे, तो वो उसकी इतने दिनों की कमी को पूरा कर रही थी। आधी रात तक वो शान के साथ मस्ती करती रही, फिर खेलते खेलते थककर उसकी गोद में सो गई। शान ने उसको अच्छे से बेड पर सुलाया और अब उसने निगाहें उठाकर देखा तो आरवी बेड के सिरहाने से अपना सर टिकाए बैठे बैठे ही सो चुकी थी। शायद वो उन्हें देखते देखते ही सो गई थी। शान की निगाहें जैसे ही उस पर पड़ी, उसको दोपहर में आरवी का उसके सीने से लगना याद आ गया। उसकी बातें याद करते हुए वो मुस्कुरा उठा। उसने आगे बढ़कर उसको अच्छे से बेड पर लिटाकर ढक दिया, फिर उसके माथे को चूमते हुए पीछे हट गया। टू बी कंटिन्यूड।